आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। लोकसभा ने वक्फ तरमीम बिल मंजूर कर लिया है। इस बिल का मकसद तारीखी विरसे के मकामात के तहफ्फुज़ और समाजी बहबूद को फरोग देते हुए वक्फ जायदादों के बंदोबस्त को आसान बनाना है। लोकसभा ने मणिपुर में सद राज के नफाज से मुतालिक आईनी करारदाद मंजूर कर ली है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी थाईलैंड और श्रीलंका के अपने दो मुल्कों के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वजीर आजम बैंकॉक में बिम्स्टेक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अमरीका के सर डोनाल्ड ट्रंप ने कई ममालिक पर जवाबी महसूलात आयद करने का ऐलान किया है। भारत पर 26% महसूल आयद किया जाएगा। म्यांमा की हुक्मरान फौज ने खाना जंगी से मुतासरा मुल्क में आए जलजले के बाद राहत कार्रवाइयां अंजाम देने के लिए आरजी जंगबंदी का ऐलान किया है। और आईपीएल टी20 क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से हराया। अब खबरें तफसील से। लोकसभा ने अपोजिशन की तरफ से पेश करदा तरामीम को खारिज करते हुए वक्फ तरमीम बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। बिल के हक में 288 अरकान ने वोट दिए जबकि 232 अरकान ने बिल के खिलाफ वोट दिए। लोकसभा में रात देर गए तक 12 घंटे से ज्यादा बहस हुई। वक्फ तरमीम बिल 2025 का मकसद वक्फ जायदादों के इंतजाम को आसान बनाना है, जिसमें विरसे के मकामात की हिफाजत और समाजी बहबूद को फरोग देने के इल्तजाम हैं। इस बिल का मकसद वक्फ जायदादों के इंतजाम में शफाफियत को बढ़ाना, वक्फ बोर्ड्स और मकामी हुक्काम के दरमियान तालमेल को बेहतर बनाना और मुतालिका फरीकों के हकूक का तहफ्फुज करना है। ये बिल मुस्लिम खवातीन, बिलखसूस बेवाओं और तलाक याफ्ता खवातीन की माशी और समाजी हैसियत को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। बिल पर बहस का जवाब देते हुए अकलियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि कयास आरई के गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के मामलों में मुदाखलत करेंगे बिल्कुल गलत है। अपोजिशन की तरफ से हुकूमत पर अकलियत मुखालिफ होने के इल्जाम को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने पारसियों जैसी छोटी अकलियती बिरादरी का भी ख्याल रखा है। बिल को गैर आइनी करार देने वाले अपोजिशन रहनुमाओं के इल्जाम का जवाब देते हुए जनाब रिजिजू ने कहा कि अपोजिशन अराकीन इसके पीछे कोई वजह बताने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि अगर ये बिल गैर आइनी है तो फिर किसी अदालत ने इसे क्यों नहीं खारिज किया। इससे कबल दिन में ऐवान में बिल को पेश करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मुसलमानों के मजहबी अमल से इस बिल का कुछ लेना देना नहीं है, ये बिल सिर्फ वक्फ बोर्ड से वाबस्ता जायदादों से मुतालिक है। वजीर मौसूफ ने इस बिल को उम्मीद अफजा करार दिया और कहा कि यह माजी से नाफिजुल अमल नहीं होगा और इसका मकसद किसी की जायदाद को जब्त करना नहीं है।
ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड है, जो कोर्ट में पेंडिंग है, उसको हम यह कानून बना के कैसे हटा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि मुल्क में किसी भी जमीन को वक्फ जायदाद करार देने के लिए वक्फ कानून की कुछ दफात का गलत इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि 2013 में यूपीए के दौर इख्तदार के दौरान वक्फ कानून में तरामीम की गई जिसका दिगर कवानीन पर भारी असर पड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर इख्तदार में कौमी राजधानी में कुल 123 जायदादों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को मुंतकिल किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के साथ साथ हुकूमत ने कानून साजी के अमल के दौरान तमाम मुतालिका फरीकों के साथ वसी मुशावरत की। उन्होंने सवाल किया कि दुनिया भर में भारत में सबसे ज्यादा वक्फ जायदाद हैं, इसके बावजूद भारतीय मुसलमान अभी भी गरीब क्यों हैं। टीडीपी के कृष्णा प्रसाद टेनेटी ने बिल की हिमायत की। उन्होंने कहा कि 1.2 लाख करोड़ रुपये मालियत की वक्फ जायदाद और 36 लाख एकड़ से ज्यादा जमीनें अकलियतों की समाजी और इक्तिसादी बहबूद की का मौका फराहम करती हैं। बहस में हिस्सा लेते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कोई भी गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि मजहबी इदारों का इंतजाम करने वालों में किसी गैर मुस्लिम को शामिल करने की ऐसी कोई तजवीज नहीं है।
सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूँ, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान, मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100-100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना।
जनाब शाह ने कहा कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये बिल मुसलमानों के मजहबी तर्ज अमल के अलावा उनकी अतिया की गई जायदादों में मुदाखलत करेगा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस हुकूमत ने 2013 में बिल में कोई तरमीम नहीं की होती तो इस बिल की कोई जरूरत पेश नहीं आती। उन्होंने कहा कि 2014 के इंतखाबात से पहले खुशामद पसंदी की सियासत के तहत कांग्रेस ने लुटियन दिल्ली की अहम जमीनों को वक्फ जायदाद करार दे दिया। मरकजी वजीर दाखला ने कहा कि कानून इंसाफ और आवाम की भलाई के लिए होता है। एआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि यह बिल तमाम मजाहिब को बराबरी का हक देने के आईन के मुखालिफ है। मुल्क भर की मुख्तलिफ तंजीमों ने वक्फ तरमीम बिल का खैर मकदम किया है और इसे नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से महरूम और पसमानदा मुसलमानों के लिए इस्लाहात के खैर सगाली जज्बे से ताबीर किया है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए पंचकुला में वाक़ हरियाणा उर्दू अकेडमी के साबिक डायरेक्टर और अदीब शम्स तबरेजी ने वक्फ तरमीम बिल की हिमायत की।
ये एक बहुत बड़ा कदम है, एक बहुत बड़ा काम भी है। पूरे हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पर वक्फ जायदादें हैं। वक्फ का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है तो ऐसी सूरत तो बेहतर ही है कि गवर्नमेंट इस पर कार्रवाई कर ले और जो मुनासिब तरीका है, जो पूरी कौम के लिए और जिसमें हिंदुस्तान के ही आवाम शामिल है उनके फायदे के लिए ये काम हो, तो मैं समझता हूँ कोई बहुत बुरी बात नहीं है।
लोकसभा की जानिब से वक्फ तरमीम बिल के मंजूर होने की खबर आने के बाद केरला के कोची के करीब वाके साहिली गांव मोनम्बम के बाशिंदों ने नरेंद्र मोदी हुकूमत की हिमायत में गुज़्त आधी रात जुलूस निकाला। लोकसभा ने मणिपुर में सदर राज के निफाज से मुतालिक आईनी करारदाद मंजूर कर ली है। ऐवान ने करारदाद पर मुख्तसर तबादले ख्याल किया और रियासत में तशद्दुद और आवाम को दरपेश सख्त मुश्किलात का मामला उठाया। ऐवान में आईनी करारदाद पर बहस का जवाब देते हुए मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा कि हुकूमत मणिपुर में मामूल के मुताबिक हालात बहाल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है।
सरकार शांति प्रस्थापित करने के सभी उच्चतम प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति शासन आने के बाद दोनों समुदायों से चर्चा भी हुई, दो मीटिंग दोनों समुदायों के सारी संस्थाओं से अलग अलग हुई है। पहली चिंता शांति प्रस्थापित करने की है, 4 महीने से एक भी मौत नहीं हुई है।
वजीर आजम ने मोदी छठी बिम्स्टेक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए थाईलैंड के 2 रोजा दौरे पर आज सुबह रवाना हुए। 2016 और 2019 के बाद वजीर आजम का थाईलैंड का ये तीसरा दौरा है। रवानगी के मौके पर अपने बयान में वजीर आजम ने वाजे किया कि गुज़्ता दहाई में खलीज बंगाल खित्ते में बिम्स्टेक इलाकाई तरक्की कनेक्टिविटी और माशी तरक्की का प्लेटफॉर्म बन गया है। वजीर आजम आज शाम बैंकॉक में थाईलैंड के अपने हम मनसब के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा दोनों मुल्कों के दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं की पेशरफ्त का जायजा लेंगे और भारत थाईलैंड दो तरफा शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल करेंगे और इलाकाई और कसीर जहती मसाइल पर अपने ख्याल का तबादला करेंगे। दोनों रहनुमा कई दो तरफा दस्तावेजात पर दस्तखत का भी मुशाहदा करेंगे। कल मुनाकिद होने वाली छठी बिम्स्टेक सरबराह कॉन्फ्रेंस का मौजू है खुशहाल मुस्तहकम और खुला बिम्स्टेक। सरबराह कॉन्फ्रेंस में बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया जाएगा और बिम्स्टेक की मुस्तकबिल की समत का तायुन करने के लिए बिम्स्टेक के मुमताज अफराद के ग्रुप की रिपोर्ट की भी तौसीक की जाएगी। वजीर आजम मोदी के थाईलैंड के शहर रामा और मलिका से भी मुलाकात करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
भारत और थाईलैंड के दरमियान तारीखी तौर पर पुरजोश दो तरफा ताल्लुकात और मुश्तरका तहजीबी सकाफती और मजहबी रिश्ते हैं। थाईलैंड भारत का समुद्री पड़ोसी मुल्क है। थाईलैंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी में एक काबिल कदर साझेदार और भारत बहरुल काहिल के विजन और बिम्स्टेक में एक इंतहाई काबिल कदर शराकतदार है। थाईलैंड आसियान की तीसरी सबसे बड़ी मईशत है और आसियान खित्ते में सिंगापुर इंडोनेशिया मलेशिया के बाद भारत का चौथा सबसे बड़ा तिजारती साझेदार है। दोनों मुल्कों की दो तरफा तिजारत تقریباً 15 ارب ڈالر ہے، جس میں بھارت کی برآمدات تقریباً 5 ارب جبکہ تھائی لینڈ کی درآمدات تقریباً 10 ارب ڈالر ہیں۔ بمسٹیک پر بھارت کی توجہ ادارے اور صلاحیت سازی، سیکورٹی کو مضبوط بنانے اور کنیکٹیویٹی بڑھانے پر ہے۔ سربراہ کانفرنس کے دوران متعدد معاہدوں اور اعلانات پر دستخط کیے جانے کا امکان ہے۔ جناب مودی کا یہ دورہ دونوں ملکوں کی دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان۔
بمسٹیک سربراہ کانفرنس کے بعد وزیر اعظم مودی سری لنکا کے صدر انورا کمارا دیسا نائکے کی دعوت پر 4 سے 6 اپریل تک سری لنکا کا دورہ کریں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی ممالک پر جوابی محصولات عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان ممالک کی درآمدات پر 26% محصولات عائد کیے جائیں گے۔ بھارت پر بھی 26% محصول عائد کیا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن میں ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب ٹرمپ نے کہا کہ محصولات پوری طرح سے جوابی رد عمل نہیں ہوں گے اور ان ممالک پر قریب نصف ٹیکس عائد کیا جائے گا جو واشنگٹن پر وہ عائد کرتے ہیں۔ جناب ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ سبھی محصولات بشمول غیر ٹیکس رکاوٹوں کا حساب لگائے گا اور امریکہ پر ان ممالک کی جانب سے عائد کیے جانے والے ٹیکس کی نصف رقم عائد کرے گا۔ امریکی صدر نے یورپی یونین کی درآمدات پر 20% اور برطانیہ کی درآمدات پر 10% ٹیکس نافذ کرنے کا بھی اعلان کیا۔ یورپی یونین اور برطانیہ دونوں امریکہ کے اہم تجارتی ساجدار اور حلیف رہے ہیں۔ امریکہ نے جاپان پر بھی 24% محصول عائد کر دیا ہے۔ یہ محصولات امریکہ کو برآمد کی جا رہی سبھی مصنوعات پر عائد کی جانے والی 10% کی بنیادی امپورٹ ڈیوٹی کے بعد نافذ ہوں گے۔ میامہ کی حکمراں فوج نے خانہ جنگی سے متاثرہ ملک میں آئے زلزلے کے بعد راحت کارروائیاں انجام دینے کے لیے عارضی جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ فوجی رہنماؤں نے کل دیر رات قومی ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں یہ اعلان کیا۔ اس کے مطابق زلزلے سے متاثرہ عوام کے تئیں ہمدردی کے اظہار کے طور پر 22 اپریل تک لڑائی روکی رہے گی۔ یہ اعلان یک طرفہ عارضی جنگ بندیوں کے بعد کیا گیا ہے۔ فوج نے انتباہ دیا ہے کہ یہ گروہ دوبارہ منظم ہونے اور ریاست پر حملوں سے باز رہیں اور ورنہ ضروری کارروائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اس دوران میامہ میں آئے 7.7 شدت کے تباہ کن زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 3,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ان زلزلوں میں 4,500 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ آئی پی ایل ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں کل رات بنگلورو کے ایم چنا سوامی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز نے رائل چیلنجرز بنگلورو کو 8 وکٹ سے شکست دی۔ گجرات ٹائٹنز نے جیت کے لیے 170 رن کا ہدف 17 اوورز 5 گیندوں میں 2 وکٹ پر آسانی سے حاصل کر لیا۔ گجرات کے لیے جوس بٹلر نے 39 گیندوں میں شاندار 73 رن بنائے۔ محمد سراج نے 3 وکٹ حاصل کیے، انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ آج کولکاتہ کے ایڈن گارڈن میں دفاعی چیمپئن کولکاتہ نائٹ رائیڈرز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فیصل خان۔
شکریہ عمار۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخباروں نے وقف ترمیمی بل سے متعلق خبر کو اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے، لوک سبھا میں شدید مخالفت کے باوجود وقف ترمیمی بل منظور، بل کی حمایت میں 288 جبکہ مخالفت میں 232 ووٹ پڑے۔ کرن ریجو نے کہا کہ نیا وقف قانون غریب مسلمانوں کی تقدیر بدل دے گا۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی ایک اہم سرخی ہے، اتر پردیش میں ایک دن ایک تہوار ہوگا، وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر کیلنڈر بنانے کی تیاری، اگلے سال سے نفاذ کی امید۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے آر جے ڈی سربراہ لالو پرساد یادو کی طبیعت ناساز، علاج کے لیے دلی ایمس ریفر کیے جانے کی خبر کو اولیت دی ہے۔
آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ لوک سبھا نے وقف ترمیمی بل منظور کر لیا ہے۔ اس بل کا مقصد تاریخی ورثے کے مقامات کے تحفظ اور سماجی بہبود کو فروغ دیتے ہوئے وقف جائیدادوں کے بندوبست کو آسان بنانا ہے۔ لوک سبھا نے منی پور میں صدر راج کے نفاذ سے متعلق آئینی قرارداد منظور کر لی ہے۔ وزیر اعظم مودی تھائی لینڈ اور سری لنکا کے اپنے دو ممالک کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم بینکاک میں بمسٹیک چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی ممالک پر جوابی محصولات عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور آئی پی ایل ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں گجرات ٹائٹنز نے رائل چیلنجرز بنگلورو کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔